नमस्कार भारत, तारीख 3 फरवरी दिन रविवार, अभिवादन स्वीकार कीजिए सिंधुवासिनी का। चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी की आक्रामक रैली।
ये दृश्य देखने के बाद मुझे समझ आ रहा है कि दीदी हिंसा पर क्यों उतर आई है, ये आपका प्यार है।
क्या सरकार दबा रही है बुद्धिजीवियों की आवाज, जानेंगे एक खास रिपोर्ट में।
यदि मुसलमान सत्ता के खिलाफ खड़ा होता है तो उसको जिहादी या आतंकवादी बोल दो, यदि दलित और आदिवासी खड़ा होता है उसको नक्सलाइट और माओवादी बोल दो।
होंगी खेल की खबरें और अखबारों की सुर्खियां भी, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मोहम्मद शाहिद से सुनिए। अमेरिका में वीजा पाने के लिए फर्जी विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के मामले में 130 विदेशी छात्रों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें अधिकतर भारतीय हैं। इस गिरफ्तारी पर भारत ने अमेरिकी दूतावास से चिंता जताते हुए उन छात्रों को कानूनी मदद मुहैया कराने की मांग की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि भारतीय छात्रों के साथ नामांकन के नाम पर ठगी हुई है। बिहार में हाजीपुर के नज़दीक एक बड़े रेल हादसे की खबर आ रही है। इस हादसे में जोगबनी आनंद विहार टर्मिनल सीमांचल एक्सप्रेस के 9 डिब्बे पटरी पर से उतर गए हैं। इस दुर्घटना में कई यात्रियों के मारे जाने की भी खबर है। रेलवे ने डॉक्टरों की टीम को दुर्घटना स्थल के लिए रवाना कर दिया है। विरोध का सामना कर रहे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने ऐसे संकेत दिए हैं कि वो विपक्ष को गलत ठहराने के लिए जल्द ही चुनाव कराने की घोषणा कर सकते हैं। कराकस में वो अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे थे। अगस्त के बाद वो पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आए हैं। उनका दावा था कि ड्रोन के जरिए उनकी हत्या कराई जा सकती है। वहीं उनसे भी बड़ी रैली विपक्ष के नेता और स्वघोषित अंतरिम राष्ट्रपति ख्वान गाइदो ने की, जहां उन्होंने वादा किया कि उनके सत्ता में आते ही वो मानवीय सहायता मंगवाएंगे। हालांकि वे कहां से लाएंगे इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। कई यूरोपीय नेताओं ने कहा है कि रविवार आधी रात तक अगर चुनावों की घोषणा नहीं हुई तो वो ख्वान गाइदो को मान्यता दे देंगे। वहीं विपक्ष के समर्थकों में जोश दिख रहा है। हम बदलाव के बहुत नजदीक हैं। अमेरिका, लीमा समूह, कोलंबिया, ब्राजील और इसराइल जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मदद के लिए धन्यवाद जो हमारा समर्थन कर रहे हैं। मैं यहाँ अपने देश के लोकतंत्र और स्वतंत्रता के लिए हूँ। मैं लोकतंत्र में पैदा हुआ था और मैं लोकतंत्र में ही मरूंगा। ये थे वेनेजुएला के स्वघोषित अंतरिम राष्ट्रपति ख्वान गाइदो के समर्थकों के शब्द। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक सरकार देश में सक्रिय 14 सशस्त्र समूहों के साथ शांति समझौते के लिए राजी हो गई है। सूडान में संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित ये शांति वार्ता अफ्रीकन यूनियन करा रही है। उसका कहना है कि यह समझौता खनिज युक्त देश में सुलह और विकास का रास्ता मजबूत करेगा। इस समझौते पर अगले सप्ताह हस्ताक्षर किए जाएंगे। हालांकि पिछले 6 समझौते नाकाम रहे हैं। बीते 6 सालों में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को सांप्रदायिक और जातीय हिंसा का सामना करना पड़ा है और शांति वार्ता के दौरान लड़ाई जारी रही है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। स्टूडेंट ईयरबुक में नस्लभेदी तस्वीर छपने पर विरोध का सामना कर रहे अमेरिकी राज्य वर्जीनिया के डेमोक्रेटिक गवर्नर राल्फ नॉर्थम ने कहा है कि वो अपना इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने अपनी माफी को दोहराते हुए कहा कि उन्हें विश्वास नहीं था कि 2 लोगों में से एक व्यक्ति नस्लभेदी वेशभूषा में था। उन्होंने तस्वीर को बेहद घिनौना बताया है। गवर्नर नॉर्थम ने कहा कि वर्जीनिया के लोगों को उन पर भरोसा करने में कठिनाई होगी और नस्लीय अन्याय पर बहस कराने को तैयार हैं।
I recognize that many people will find this difficult to believe.
मैं मानता हूं कि बहुत से लोगों को इस पर विश्वास करना कठिन होगा। मेरे कल के बयान में मैंने स्वीकार किया था कि जो सबूत उस समय पेश किए गए, इस बात की अधिक संभावना है कि मैं उस तस्वीर में था। ये थे वर्जीनिया के डेमोक्रेटिक गवर्नर राल्फ नॉर्थम के शब्द। अमेरिका के शीत युद्ध काल के परमाणु हथियार संधि स्थगित करने के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस नई मध्यम दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित करेगा। उन्होंने घोषणा की कि रूस अब निलंबन में शामिल होगा। उन्होंने महंगे हथियारों की दौड़ में शामिल होने के खिलाफ भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि वो यूरोप में कभी भी वो हथियार तब तक तैनात नहीं करेंगे जब तक कि अमरीका वैसे हथियार तैनात नहीं करता। सूडान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि आर्थिक तंगी के विरोध में 6 हफ्ते से चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शन वैध हैं और इनका सम्मान किया जाना चाहिए। बीबीसी समाचार।
ये ये बीबीसी हिंदी रेडियो की पहली सभा नमस्कार भारत है। आपके साथ मैं हूँ सिंधु वासिनी। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। अमेरिका के अलग अलग शहरों से पुलिस ने 100 से ज्यादा भारतीय छात्रों को गिरफ्तार किया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन छात्रों पर वीजा हासिल करने के लिए फर्जी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने और फर्जी सर्टिफिकेट पेश करने के आरोप हैं। क्या अब इन छात्रों को भारत लौटने पर मजबूर होना पड़ेगा या इन्हें कोई और सजा मिलेगी? न्यूयॉर्क से पूरे मामले की जानकारी दे रहे हैं सलीम रिजवी।
अमेरिका के मिशिगन प्रांत में फार्मिंगटन यूनिवर्सिटी के नाम से एक संस्थान में भारतीय छात्रों द्वारा प्रवेश लेने के बाद पिछले हफ्ते अमेरिकी अप्रवासन विभाग ने 100 से अधिक छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। इन छात्रों पर अप्रवासन कानून तोड़ने के आरोप लगाए गए हैं। इस यूनिवर्सिटी ने दावा किया था कि उसका कार्यक्रम थोड़ा अलग किस्म का है और छात्रों को क्लासेस में उपस्थित रहने में छूट दी जाती है और विभिन्न प्रकार के छात्र वहां पढ़ते हैं। अप्रवासन विभाग ने पिछले हफ्ते ये कहा कि इस यूनिवर्सिटी में ना तो कोई छात्र थे, ना ही कोई क्लासेस होती थीं और ना ही कोई कोर्स शामिल था। दरअसल ये यूनिवर्सिटी एक फर्जी यूनिवर्सिटी खुद अप्रवासन विभाग ने बनाई थी, जिससे इमिग्रेशन के फ्रॉड के मामले पकड़े जा सकें। अप्रवासन विभाग का कहना है कि इस तरह की फर्जी यूनिवर्सिटी में प्रवेश के जरिए छात्र अमेरिका में रहने के लिए स्टूडेंट वीजे का इस्तेमाल करते हैं। अप्रवासन विभाग ने 6 ऐसे लोगों को गिरफ्तार भी किया है जो छात्रों को इस तरह की फर्जी यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए पैसे लेकर अमेरिका में छात्रों को ले आते हैं। इस तरह के मामलों में अप्रवासन विभाग ने अमेरिका भर में कई शहरों में छापे मारकर छात्रों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए कई छात्रों के वकील श्रीनिवासा जोना लगड़ा ने बीबीसी हिंदी को बताया कि इस मामले में छात्रों का केस मजबूत है।
In this case, I spoke to 6 detainees. Everybody informed me.
छात्रों के वकील श्रीनिवास कह रहे थे कि छात्रों के मुताबिक उनको यूनिवर्सिटी के अधिकारियों द्वारा ये बताया गया था कि उन्हें क्लासेस अटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उनके कागजात भी यूनिवर्सिटी ने रख लिए थे, इसलिए वो किसी और यूनिवर्सिटी में प्रवेश भी नहीं ले सकते थे। श्रीनिवास जोना लगड़ा ने बताया कि उनके पास पूरे अमरीका से फोन कॉल आ रही है और इस मामले में गिरफ्तार हुए कई छात्र मदद मांग रहे हैं। उनका कहना है कि 600 से अधिक छात्र गिरफ्तार किए गए हैं और इनमें 300 से अधिक भारतीय छात्र हैं, जिनमें से 90% का ताल्लुक तेलंगाना और आंध्र राज्यों से है। छात्रों के वकील श्रीनिवास ने यह भी बताया कि इन छात्रों के माता पिता भारत में ही हैं और यहाँ इन छात्रों की मदद दोस्त और कुछ परिवार वाले कर रहे हैं। खासकर अमेरिका में मौजूद कई तेलुगु संस्थाएं भी इन छात्रों की मदद कर रही हैं। अमेरिका में भारतीय दूतावास और विभिन्न कॉन्सुलेट्स के जरिए भी छात्रों की मदद की जा रही है। वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास में 2 फोन लाइन भी शुरू की गई है, जिससे छात्रों की मदद की जा सके। फ्लोरिडा में रहने वाले एक भारतीय मूल के इमिग्रेशन के वकील अश्विन शर्मा ने भी इस तरह के कई मामले देखे हैं। वो कहते हैं कि अमेरिकी सरकार इस तरह छात्रों को गिरफ्तार करके संदेश देना चाहती है।
काफी ऐसे केसेस आए हैं, लेकिन उनमें से मेजोरिटी ऑफ केसेस हैं वो किसी थर्ड पार्टी या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या ये थर्ड पार्टी ने सेटअप किया हुआ है यूनिवर्सिटी। सिर्फ ये पिछले 2 केस जो हैं 2016 में UNNJ और 2019 में ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ फार्मिंगटन, ये अलग हैं, उनका सिचुएशन डिफरेंट है, क्योंकि ये 2 यूनिवर्सिटीज नकली यूनिवर्सिटीज हैं जो गवर्नमेंट ने खुद बनाई हैं, राइट। सो A to Z ये नकली हैं और गवर्नमेंट ने कोशिश की है एटलीस्ट बाहर से दिखाने के लिए कि ये जायज यूनिवर्सिटीज हैं। इनके जो 2 मकसद थे इस यूनिवर्सिटी का, जो नकली यूनिवर्सिटी बनाने का जो कारण था, वो तो ये इन्होंने सक्सेसफुली एक्सिक्यूट किया है। और वो 2 जो मकसद थे वो एक था कि हम एक संदेश भेजें हिंदुस्तानियों को कि हमारे और आपके बीच एक लक्ष्मण रेखा हमने खींची है और आपका स्वागत नहीं है। और दूसरा जो इनका बेसिस था कि ये न्यूज मीडिया में दिखाएं कि ये बड़ी बात है और ये जो लोग हैं ये फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन है कि इसके जरिए ये इंडियन या बाहर वाले स्टूडेंट्स को बुरा दिखाएं एज अ होल।
भारतीय छात्रों को गिरफ्तार किए जाने पर भारत ने शनिवार को नई दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास से अपनी चिंता जताई है और उन छात्रों को तत्काल कानूनी मदद देने की मांग भी की है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो इस मामले को गंभीरता से देख रहा है और समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। सलीम रिजवी, वॉशिंगटन DC।
अमरीका में भारतीय छात्रों की गिरफ्तारी, रिपोर्ट सुना रहे थे सलीम रिजवी। श्रोताओं, लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं और चुनाव की सरगर्मियां सर्दी के इस मौसम में भी बखूबी महसूस की जा सकती हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत प्रशासित कश्मीर में होंगे। वो लेह, जम्मू और श्रीनगर के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी किए गए एक बयान में बताया गया है कि वो जम्मू के विजयपुर में और पुलवामा के अवंतीपुरा में नए एम्स की आधारशिला रखेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में रैली भी करने वाले हैं और उनके दौरे के विरोध में अलगाववादियों ने कश्मीर बंद की अपील की है। इन सारी घटनाओं को देखते हुए राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये तो रही पीएम मोदी के कश्मीर दौरे की बात, और अब बात उनके दूसरे दौरे की। उन्होंने कल पश्चिम बंगाल के ठाकुर नगर और दुर्गापुर में दो रैलियां की। रैलियों में प्रधानमंत्री के तेवर काफ़ी तल्ख नजर आए और वो पूरी आक्रात्मकता के साथ राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोलते दिखे।
ये दृश्य देखने के बाद मुझे समझ आ रहा है कि दीदी हिंसा पर क्यों उतर आई है। ये आपका प्यार है।
आगामी चुनावों के मद्देनजर ममता बनर्जी का गढ़ माने जाने वाले पश्चिम बंगाल में मोदी की रैली बेहद अहम मानी जा रही है। बंगाल में पांव जमाने की कोशिश कर रही भाजपा के लिए ये रैली कितनी अहम है, बीबीसी संवाददाता मानसी दास ने कोलकाता में मौजूद स्थानीय पत्रकार प्रभाकर मणि तिवारी से संपर्क साधा और उनसे यही सवाल किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से ही अनौपचारिक रूप से बीजेपी के चुनाव अभियान की शुरुआत की और उन्होंने बड़े हमलावर अंदाज में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी और सरकार पर हमला बोला। और ये रैली काफी उनकी अहम थी। दो रैलियां थी, एक तो दुर्गापुर में और पहली उन्होंने कलकत्ता से सटे बांग्लादेश के बॉर्डर पर ठाकुर नगर इलाका है, वहाँ मतुआ संप्रदाय एक है जो देश के विभाजन के बाद यहाँ आया था और 30 लाख लोग हैं उनके और कम से कम 5 लोकसभा सीटों पे बहुत निर्णायक हैं उनके वोट। तो मोदी ने वहाँ एक मतुआ महासम्मेलन हुआ तो उसमें शिरकत की और फिर मतुआ संप्रदाय की जो सबसे बुजुर्ग महिला हैं 100 साल की वीणा देवी, उनसे मुलाकात की, उनके आशीर्वाद लिए और कहा कि हाँ मैं आया हूँ आपके दर्शन करने के लिए। तो इन सब चीजें काफी बीजेपी के लिए फायदेमंद रहेंगी। ये एक रणनीति में उनके बदलाव है। और फिर वहाँ तो मोदी ज्यादा कुछ कह नहीं पाए क्योंकि भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई और फिर मोदी जल्दी ही वहां से निकल गए। लेकिन दुर्गापुर में वो काफी आक्रामक नजर आए। उन्होंने कहा कि दीदी सिंडिकेट राज चला रही हैं और वसूली कर रही है, ट्रिपल टी कहा एक तरह से उन्होंने कि तृणमूल तोलाबाजी कर रही है, तोलाबाजी टैक्स वसूल रही है, तोलाबाजी को बंगला में अवैध उगाही कहा जाता है। तो उन्होंने हमलावर रुख कहा कि दीदी आखिर डर क्यों रही है, केंद्रीय एजेंसियों को बंगाल में आने से रोक रही हैं, अगर कुछ किया नहीं है तो डरना किस बात का है, मैं तो कभी नहीं डरा। और फिर उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमलों की बात कही कि दीदी के लोग खुलेआम हमले कर रहे हैं और सरकार चुप बैठी है, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ये तय मानिए कि ये सरकार अब की जानी है, 2021 में यहाँ भाजपा की सरकार बने
जी। और जैसा कि आपने बताया कि भाजपा का इस बार रुख बहुत आक्रामक रहा है, आपको क्या लगता है इस आक्रामक रुख का कुछ फायदा भी मिलेगा भाजपा को?
कम से कम भाजपा ही रणनीतिकार तो यही सोच रहे हैं। पहली बार इन्होंने रणनीति में कुछ बदलाव किया है और मेरी कुछ विश्लेषकों से भी बात हुई, पर्यवेक्षकों से, उनका भी कहना था कि भाजपा के रुख में जरा बदलाव आया है। तो इसकी कई वजह हैं। पहली वजह है कि उसकी रथ यात्रा को सरकार की अनुमति नहीं मिली, फिर अदालती दाव पेंच में फंस गई, फिर अमित शाह की रैली के समय हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति नहीं मिली, कई रैलियों की अनुमति नहीं दी गई, और फिर बीते 2-3 दिन पहले अमित शाह की एक सभा थी उसमें जब लोग लौट रहे थे तो तृणमूल वालों ने हमले किए। तो इन सबको देख के बीजेपी ने कुछ बदलाव किया है। जैसे एक राजनीतिक विश्लेषक है मनोतोष नंदी, उनका कहना है कि अब बीजेपी शायद ये समझ रही है कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, तो इसलिए वो भी हमलावर रुख अपना रही है तृणमूल के जवाब में। और उसको उम्मीद है कि कुछ खास इलाकों में, सीमावर्ती इलाकों में उसको फायदा मिलेगा, इसलिए मोदी ने नागरिकता विधेयक का भी मुद्दा उठाया जिसपे काफी नॉर्थ ईस्ट में खासकर विवाद हो रहा है। तो मोदी का कहना था कि मतुआ संप्रदाय के लोग देश की आजादी के बाद आए हैं, ऐसे ही जो अल्पसंख्यक समुदाय आ रहे हैं उनको हम नागरिकता देंगे, सम्मान देंगे, लेकिन दीदी विरोध कर रही है तो दीदी को समर्थन करना चाहिए राज्यसभा में इस विधेयक का।
तो पश्चिम बंगाल में आर पार की लड़ाई के मूड में भारतीय जनता पार्टी। कोलकाता से अधिक जानकारी दे रहे थे स्थानीय पत्रकार पीएम तिवारी। और अब जान लेते हैं कि पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों में बीते हफ्ते क्या क्या खबरें छाई रहीं। उर्दू प्रेस रिव्यू तैयार किया है बीबीसी संवाददाता इकबाल अहमद ने और इसे सुना रहे हैं मोहम्मद शाहिद।
पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों में इस हफ्ते भारत प्रशासित कश्मीर, हज सब्सिडी और अफगानिस्तान का मुद्दा छाया रहा। सबसे पहले बात भारत प्रशासित कश्मीर की। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत प्रशासित कश्मीर में रह रहे लोगों के समर्थन में ब्रितानी संसद में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अखबार डेली खबरें के अनुसार 4 फरवरी को ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप के तहत ब्रितानी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत प्रशासित कश्मीर में रह रहे लोगों के समर्थन में एक खास प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। इसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी हिस्सा लेंगे। अखबार के अनुसार भारत ने इस कार्यक्रम को रोकने के लिए ब्रिटेन से एक खत लिखकर अपील की थी, लेकिन ब्रिटेन की सरकार ने इस अपील को ठुकरा दिया। अखबार डेली खबरें लिखता है कि नई दिल्ली स्थित ब्रितानी दूतावास के एक प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा है कि ब्रितानी संसद किससे मिलते हैं और क्या बात करते हैं ये उनका अधिकार है, ब्रिटेन की सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। अखबार लिखता है कि ब्रितानी विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि 4 फरवरी के प्रोग्राम के बाद लंदन में एक प्रदर्शनी होगी जिसमें भारत प्रशासित कश्मीर में होने वाले कथित मानवाधिकार उल्लंघन को उजागर किया जाएगा। ब्रितानी प्रवक्ता ने कहा कि ब्रिटेन को इस बात की जानकारी है कि 4 फरवरी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी लंदन आ रहे हैं, लेकिन ये उनका निजी दौरा है और इस दौरान ब्रितानी प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री से उनकी कोई मुलाकात नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में इन दिनों हज के खर्च में हुई बढ़ोतरी का मुद्दा भी छाया हुआ है। इमरान खान की सरकार ने सत्ता में आने के बाद इस हफ्ते अपनी पहली हज पॉलिसी जारी की। इसके तहत अब एक पाकिस्तानी को इस साल हज पर जाने के लिए 4,76,000 पाकिस्तानी रुपए देने होंगे, जबकि पिछले साल ये रकम 2,80,000 रुपए थी। इसको लेकर पाकिस्तानी संसद में खूब हंगामा हुआ। अखबार नवाए वक्त के अनुसार विपक्षी पार्टी जमात इस्लामी के एक सांसद मुश्ताक अहमद ने कहा कि सरकार ने हज यात्रियों पर ड्रोन हमला किया है। सांसद ने कहा कि सरकार ने हज पर कोई सब्सिडी नहीं दी। उनके अनुसार धार्मिक मामलों के मंत्री ने अपनी रिपोर्ट में हज सब्सिडी देने की अपील की थी, लेकिन इमरान खान की सरकार ने अपने ही मंत्री की सिफारिश को ठुकरा दिया। विपक्ष के हमले का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री अली मोहम्मद खान ने कहा कि सऊदी अरब में ही हज का खर्च बढ़ गया है, इसलिए हज यात्रियों से ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। लेकिन अखबार जंग के अनुसार धार्मिक मामलों के मंत्री नूरुल हक कादरी ने कहा कि रियासत मदीना का मतलब ये नहीं कि लोगों को मुफ्त में या सब्सिडी लेकर हज कराया जाए। उन्होंने कहा कि सब्सिडी लेकर हज पर जाना हज की बुनियादी भावना के ही खिलाफ है। वहीं अमेरिका और तालिबान के बीच समझौते से जुड़ी खबरें भी पूरे हफ्ते अखबारों में छाई रहीं। अखबार नवाए वक्त के अनुसार तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने कहा कि अमरीकी राष्ट्रपति अफगानिस्तान से अपनी फौज को वापस बुलाने के लिए गंभीर है। तालिबान प्रवक्ता ने कहा कि अमरीकी सेना की वापसी के बाद तालिबान अफगानिस्तान में इस्लामिक कानून लागू करेगा, लेकिन यह सभी राजनीतिक दलों से विचार विमर्श के बाद लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब तालिबान महिलाओं की शिक्षा और नौकरी करने के खिलाफ नहीं है और उनकी सरकार ऐसा माहौल बनाने की पूरी कोशिश करेगी ताकि अफगानिस्तान की महिलाएं खुद को सुरक्षित समझकर काम कर सकें। अखबार के अनुसार तालिबान प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका से अगले दौर की बातचीत 25 फरवरी को दोहा में होगी, लेकिन अमेरिका की तरफ से अभी तारीख की पुष्टि नहीं हुई है।
ये थे पाकिस्तान से छपने वाले अखबारों की समीक्षा जिसे तैयार किया था इकबाल अहमद ने। उर्दू प्रेस रिव्यू के बाद अब जान लेते हैं कि दिल्ली से छपने वाले अखबारों में आज क्या खास है। जी शाहिद बताइए।
जी सिंधु वासनी, एक खबर जो हर अखबार के पहले पन्ने पर दिखेगी वो है सीबीआई के नए प्रमुख।
जी,
आलोक वर्मा के जाने और काफी वाद विवाद के बाद अब जो है वो मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस ऑफिसर ऋषि कुमार सिंह को जो है वो नया सीबीआई प्रमुख बनाया गया है। नए सीबीआई चीफ का काफी समय से इंतजार किया जा रहा था क्योंकि इस पे इतना विवाद रहा। इस खबर पर इंडियन एक्सप्रेस का शीर्षक है गवर्नमेंट पिक्स न्यू डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, अपोजिशन डिसेंट्स। हिंदुस्तान टाइम्स का शीर्षक है आर के शुक्ला नेम्ड न्यू सीबीआई डायरेक्टर। एनबीटी का शीर्षक है सीबीआई के नए बॉस पर भी कांग्रेस के सवाल। और दैनिक जागरण का भी शीर्षक है कि ऋषि बने सीबीआई प्रमुख, खड़गे ने जताया संतोष। जैसे कांग्रेस के जो नेता हैं और विपक्ष में कांग्रेस के लोकसभा में विपक्ष के नेता जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उन्होंने इस पर सवाल उठा दिया। हालांकि वो भी उस समिति में होते हैं जो सीबीआई प्रमुख चुनती है, तो उन्होंने सवाल उनके अनुभव पर उठाया है। एक खबर और जो हर जगह दिख रही है वो है भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में जो दलित स्कॉलर हैं प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े, उनको अदालत ने रिहा कर दिया गया है। उनको पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इसको एक्सप्रेस ने अपनी प्रमुख खबर बनाया है और शीर्षक दिया है तेलतुंबड़े अरेस्टेड रिलीज्ड, कोर्ट सेज एक्शन इलीगल कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, दलित प्रोफेसर को पुलिस ने पकड़ा, अदालत ने छुड़वाया।
जी।
और जिस तरीके से अभी हमने सुनी थी नवभारत वो खबर के मोदी की रैली है, वो उसको भी कई लोगों ने बनाया है, जो उन्होंने कल 24 परगना जिले की पश्चिम बंगाल में की है। वो दैनिक जागरण उसको शीर्षक देता है कि ममता के पांव तले खिसकने लगी है जमीन, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं। और इसके अलावा नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, मोदी को देखने की चाहत में भीड़ बेकाबू, सिर्फ 14 मिनट बोल पाए।
जी, ऐसा तो, बहुत कम ही होता है कि इतने कम वक्त बोलते हैं
जी प्रधानमंत्री मोदी, 14 मिनट बोले केवल, ये बड़ी बात है। क्योंकि कल इतनी भीड़ हो गई थी और लोग जो है उनके मंच तक आना चाह रहे थे, तो वहाँ भगदड़ का माहौल मच गया। और अभी जिस तरीके से हमने उर्दू प्रेस रिव्यू में बात सुना कि शाह जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं शाह महमूद कुरैशी, वो ब्रिटेन जाएंगे और वहाँ पर भारत प्रशासित कश्मीर में जो कथित हिंसा है या कथित जो ज्यादतियाँ हैं उसका मुद्दा उठाएंगे, तो शाह महमूद कुरैशी ने मीर वाइज उमर फारूक जो भारत प्रशासित कश्मीर के अलगाववादी हैं उनके बाद उनसे अभी हाल फिलहाल में बात की थी। उसके बाद अब उन्होंने जो दूसरे नेता हैं गिलानी, सैयद अली शाह गिलानी हुर्रियत के, अब उनसे उन्होंने बात की है, उनसे भी उन्होंने फ़ोन पे बात की है, जो एक फिर से भारत सरकार हो सकता है इसके ऊपर सवाल खड़े करें। और सिंधु वासनी, कल आपको मैं एक सवाल पूछूंगा, कल आपको क्या भूकंप के झटके महसूस हुए?
नहीं, मुझे तो महसूस नहीं हुए,
लेकिन कल 5.8 भूकंप के झटके जो है वो यहाँ तक महसूस किए गए हैं, क्योंकि वो काबुल में आया था और उसके बाद यहाँ तक झटके महसूस किए गए हैं दिल्ली तक।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखबारों की समीक्षा के लिए शाहिद। एक बार फिर दिल्ली का रुख करते हैं, जहाँ कल प्रेस क्लब में देश के करीब 30 संगठनों ने एक स्वर में कहा कि मौजूदा सरकार कमजोर तबके के हकों की बात करने वाले और बुद्धिजीवियों की आवाज़ दबाने के लिए कानूनों का गलत इस्तेमाल कर रही है। किस किस को कैद करोगे नाम की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ, सुनिए बीबीसी संवाददाता मानसी दास की खास रिपोर्ट में।
यदि मुसलमान सत्ता के खिलाफ खड़ा होता है उसको जिहादी या आतंकवादी बोल दो,
भारत में दलित आंदोलन का चेहरा बन चुके विधायक जिग्नेश मेवाणी के ये शब्द बता रहे हैं कि दिल्ली के प्रेस कॉन्फ्रेंस में शनिवार दोपहर 3:30 बजे शुरू हुई इस खास प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या था। कथित तौर पर सरकार के दमनकारी कानूनों, इम्प्यूनिटी और गिरफ्तारी के खतरों के बारे में आगाह करने के संबंध में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाल में हुई भीमा कोरेगांव मामले की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए सामाजिक कार्यकर्ताओं की जल्द रिहाई, अल्पसंख्यकों, दलितों और आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए कदम उठाने और देश में फैले डर के माहौल पर चर्चा हुई। साथ ही करीब देश के 30 संगठनों ने एक स्वर में UPA जैसे दमनकारी कानूनों का गलत इस्तेमाल रोकने की भी मांग की। किस किस को कैद करोगे नाम से कैंपेन अगेंस्ट स्टेट रिप्रेशन के बैनर तले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन रिहाई मंच, भीम आर्मी, मजदूर एकता संगठन और समाजवादी जन परिषद समेत करीब 30 संगठनों ने मिलकर किया था। लंबे समय से बस्तर में काम कर चुके मानवाधिकार कार्यकर्ता हिमांशु कुमार ने कहा,
भीमा कोरेगांव में जिन सामाजिक कार्यकर्ताओं को ये कहकर कि ये मोदी साहब को मारना चाहते हैं इसलिए इनको जेल में डाला जाए, ये बहुत हंसी का इल्जाम है।
मौजूदा सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा,
ये लोग कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी और देशभक्त लोग हैं, देश का मतलब है इस देश के लोग, गरीब, आदिवासी, दलित, ये है देश।
दलित आदिवासियों और मुसलमानों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के बारे में दलित चिंतक अनिल चमड़िया ने कहा कि मौजूदा हालात लोकतंत्र के लिए अच्छे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इस समय अल्पसंख्यकों को डराने और अदालतों को प्रभावित करने का इंटेंशन दिख रहा है। इतिहासकार उमा चक्रवर्ती ने सरकार की नीतियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सरकार एक अलग तरह की इमरजेंसी लगा रही है, लेकिन ये नेशनल इमरजेंसी नहीं बल्कि सेक्शनल इमरजेंसी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच वकील वृंदा ग्रोवर ने बताया कि पुणे की एक अदालत ने गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े को रिहा करने का आदेश दिया है। उन्होंने तेलतुंबड़े की गिरफ्तारी को अवैध किडनैपिंग बताया और कहा,
The arrest of Anand Teltumbade this early morning is not even an arrest, it's an illegal kidnapping by the police. हमको ये साफ रूप से दिखाती है कि कानून और सुप्रीम कोर्ट को कोई मान्यता नहीं दी जा रही है।
प्रोफेसर तेलतुंबड़े को प्रतिबंधित माओवादियों से संबंध रखने के शक पर शनिवार सुबह 4 बजे मुंबई हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था। हालांकि इसी साल जनवरी 14 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 महीने की सुरक्षा दी थी। लेकिन जिस UAPA कानून की यहां चर्चा हो रही है वो आखिर है क्या? UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, या कहें गैर कानूनी गतिविधियाँ प्रतिबंध कानून। ये कानून साल 1967 में संसद में लाया गया था। दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर उज्जवल बताते हैं,
अभी का जो यूपीए देख रहे हैं वो पोटा के रिपील के बाद आता है। जब 2004 में पोटा रिपील होता है तो उसके कुछ प्रोविजन यूपीए में डाल दिए जाते हैं, फिर 2008 में मुंबई हमलों के बाद, और फिर 2012 में। इसमें सिर्फ अनलॉफुल असेंबली की बात नहीं है, इसमें टेररिज्म और टेररिस्ट गैंग की भी बात है। कोटा और टाडा से बदलाव ये है कि वहाँ पे एक प्रोविजन था कि पुलिस के सामने जो बयान देते हैं जिसको कन्फेशन कहते हैं वो कोर्ट में माना जाता था, यूएपी में वो नहीं है।
वहीं लेखक और मानवाधिकार कार्यकर्ता सुभाष गाताड़ी कहते हैं,
ऐसा कानून है, किसी भी निरपराध व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर सकते हैं और फिर रख सकते हैं।
प्रोफेसर उज्जवल कहते हैं कि UAPA से जुड़ी सबसे बड़ी बात जो परेशान करती है वो ये है कि कोर्ट में सरकारी अभियोजक को सुनने का प्रावधान है, और अगर उन्होंने कहा कि उक्त व्यक्ति पर आरोप है तो उस व्यक्ति को जमानत तक नहीं मिलती। मानसी दास, BBC दिल्ली।
और अब वक्त है खेल समाचारों का।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ आदेश कुमार गुप्त। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। अपनी ही मेजबानी में खेलते हुए भारतीय डेविस कप टीम मेहमान इटली का सामना नहीं कर सकी, और कोलकाता में हुए डेविस कप वर्ल्ड ग्रुप क्वालिफायर मुकाबले में 3-1 से हारकर बाहर हो गई। पहले दिन दोनों एकल मुकाबले जीतकर 2-0 की महत्वपूर्ण बढ़त बनाने वाली इटली को हालांकि कल युगल मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। भारत के रोहन बोपन्ना और द्विज शरण की जोड़ी ने इटली के माथियो बेरेटिनी और सिमोन बोलेली की जोड़ी को 4-6, 6-3, 6-4 से बात दी। लेकिन इसके बाद उलट एकल में इटली के आंद्रे सेपी ने प्रजनेश गुणेश्वरन को 6-1, 6-4 से हरा दिया और 3-1 के निर्णायक बढ़त भी हासिल कर ली। इसे देखते हुए पांचवें और आखिरी उलट एकल मैच की जरूरत भी नहीं पड़ी। इस हार के साथ ही भारत अब वापस एशिया ओशियाना जोन में लौट आया। उधर भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज वेलिंगटन में मौजूदा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की सीरीज का पांचवां और आखिरी मैच खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने विराट कोहली की कप्तानी में शुरुआती 3 मैच जीतकर सीरीज पहले ही अपने नाम कर ली थी, लेकिन न्यूजीलैंड ने पिछले मुकाबले में भारत को बेहद आसानी से 8 विकेट से हरा कर सीरीज में थोड़ा रोमांच पैदा किया। चौथे मुकाबले में भारतीय टीम केवल 92 रन पर सिमट गई। तब न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने केवल 21 रन पर 5 विकेट झटक कर मैच को लगभग एक तरफा कर दिया। भारत के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार भी मानते हैं कि बोल्ट को खेलना मुश्किल था, और विराट तो अद्भुत हैं, लेकिन उनकी जगह खेलने वाले शुभमन गिल के पास भी अपनी क्षमता दिखाने का मौका है।
चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं मोहम्मद शाहिद से।
BBC समाचार। अमेरिका में वीजा पाने के लिए फर्जी विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के मामले में 130 विदेशी छात्रों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से अधिकतर भारतीय हैं। इस गिरफ्तारी पर भारत ने अमेरिकी दूतावास से चिंता जताते हुए उन छात्रों को कानूनी मदद मुहैया कराने की मांग की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि भारतीय छात्रों के साथ नामांकन के नाम पर ठगी हुई है। बिहार में हाजीपुर के नज़दीक एक रेल हादसा हुआ है। इस हादसे में जोगबनी आनंद विहार टर्मिनल सीमांचल एक्सप्रेस के 9 डिब्बे पटरी पर से उतर गए हैं। इस दुर्घटना में कई यात्रियों के मारे जाने की भी खबर है। रेलवे ने डॉक्टरों की टीम को दुर्घटना स्थल के लिए रवाना कर दिया है। विरोध का सामना कर रहे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने ऐसे संकेत दिए हैं कि वो विपक्ष को गलत ठहराने के लिए जल्द ही चुनाव कराने की घोषणा कर सकते हैं। कराकस में वो अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे थे कि अगस्त के बाद वो पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आए हैं। BBC समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे तिलक राज भाटिया। आपसे अगली मुलाकात होगी शाम 7:30 बजे। दिन भर में सिंधुवासिनी को सभी साथियों के साथ अनुमति दें। नमस्कार।